शांति। अभी तक हमने देखा कि कैसे ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा का अवतरण हुआ और यज्ञ की स्थापना हुई। बहुत सारे समस्याएं आई, बहुत सारे विघ्न आए। मम्मा को कोर्ट में बुलाया गया, पिकेटिंग हुआ। बाबा ब्रह्मा बाबा के बारे में न्यूज़पेपर्स में बहुत सारी बातें लिखी। इन सभी समस्याओं को सामना करते हुए, त्याग और तपस्या करते हुए, इस यज्ञ के नींव को मजबूत करते रहे। कराची में अलग अलग भवनों में रहते हुए यज्ञवत्स मुरली के लिए मिलते थे, क्लिफ्टन में भी जाते थे, बाबा लेके जाते थे, सागर किनारा बिठा करके बाबा तपस्या कराते थे और अलग अलग प्रोग्राम्स बाबा दिन भर के लिए देते थे। ऐसे करते करते 11-12 साल हो गए। 1947 में, जैसे हम सभी को पता है कि भारत को स्वतंत्रता मिली, फिर उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन हुआ। जब विभाजन हुआ, कराची पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। उस समय की परिस्थिति बहुत ही तनावपूर्ण था। शहर में मारामारी, खून खराबा, हिंदू और मुसलमानों के बीच दंगे, बहुत अशांति का वातावरण चल रहा था। लेकिन यज्ञवत्स यज्ञ के अंदर तपस्या में मग्न थे और ही बाबा सभी को आत्मिक स्थिति का अभ्यास करा रहे थे, क्योंकि बाबा का कहना था कि आत्मिक स्थिति के अभ्यास से अनेकों को हम साक्षात्कार करा पाएंगे और फिर ये जो अस्थिरता है या फिर भय है वो नहीं हो पाएगा। बिल्ली के पुंगरे की तरह सभी यज्ञवस बहुत ही सुरक्षित रहे यज्ञ के अंदर, और अलग अलग प्रोग्राम्स बाबा देते थे। कभी संदेशियों को संदेश ले आने ले भेजते थे और शाम को जो बाबा संदेश बेचते थे उसके आधार से कुछ ना कुछ ऐसे नाटक, ड्रामा या फिर ऐसे प्रसंगों को वो एनैक्ट करते थे। कभी भक्त प्रहलाद का, कभी देवी देवताओं का, कभी विनाश का, कभी आने वाले सतयुगी दुनिया में क्या होगा, कैसे सभी राजकुमार राजकुमारियां पढ़ाई करेंगे, कैसे वहां पट्टाभिषेक होता है, कैसे वहां स्वयंवर होता है। तो इस रीति से अलग अलग प्रसंगों का, अलग अलग दृश्य का वो नाटक करते थे और उसमें सभी मग्न थे। कभी कभी 8 संदेश या 7 में संदेश के लिए जाते थे, ट्रांस में जाते थे और वहां का आकर के वर्णन करते थे। बाहर दुनिया में कोलाहल मचा हुआ था, लेकिन यज्ञ के अंदर सभी अपने ही मस्ती में मस्त थे, मोलाई मस्ती में सभी मग्न थे। ऐसे करते करते एक समय आया जब भारत जो गए थे यज्ञवत्स के कुछ रिश्तेदार, वो सभी यज्ञवत्सों को बुला रहे थे भारत आने के लिए। कि उनके मन में था कि पाकिस्तान में रह करके सुरक्षित नहीं है तो आप सभी यहाँ आए। लेकिन बाबा का कहना था कि हम ऐसे नहीं जा सकते, ब्राह्मण केवल निमंत्रण पर या फिर सेवाओं के लिए हम जा सकते हैं। तो मनमोहिनी दीदी अपना अनुभव सुनाते हैं, अपना लौकिक संबंधी मनमोहिनी दीदी को निमंत्रण दिया आकर के ज्ञान सुनाने के लिए वहां बॉम्बे में आकर के यज्ञ के बारे में या फिर तपस्या के बारे में, ज्ञान के बारे में वर्णन करने के लिए, ज्ञान देने के लिए उन्होंने बुलाया। तो फ्लाइट का टिकट दे करके जब भेजा तो दीदी और कुछ बहनें साथ में मुंबई पहुंचे। एयरपोर्ट में जब पहुंचे, दीदी के सगे संबंधी माला लेकर के, फूलों के हार लेकर के पहुंचे, बहुत खुशी से दीदी का स्वागत करने के लिए पहुंचे। लेकिन दीदी के अंदर बाबा ने जो शिक्षाएं दी थी वो कूट कूट करके भरा हुआ था। बाबा का कहना था कि हम ब्राह्मण कभी फूलों का हार हम स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हम संपूर्ण नहीं बने हैं। फूलों का हार केवल देवी देवताएं स्वीकार कर सकते हैं, हम अभी सेवाधारी हैं। तो दीदी ने उन फूलों का हार स्वीकार नहीं किया और फिर उनके संबंधी उनके घर लेके गए। घर पहुंचते ही बहुत सारे संबंधी, लौकिक संबंधी वहां एकत्रित हुए, तभी से ज्ञान देना शुरू किया। 2 मास तक दीदी उनके लौकिक परिवार में रहे। दीदी का कहना है कि 2 मास तक जो मैं वहां रही, जो कमरे हमें दिए गए थे उन कमरों के बाहर हम नहीं गए। वहीं खाना बनाते थे, भोजन बनाते थे, एक कमरे में बैठ करके सत्संग करते थे और एक कमरे में उनका बेडरूम था। यही 3-4 कमरे के अंदर ही वो रहते थे और कभी भी बाहर नहीं गए। कभी उनके लौकिक संबंधी गाड़ी ले आते थे, बॉम्बे घुमाने ले जाना चाहते थे, लेकिन दीदी का कहना कि हम क्या करें वहां जाकर के, हमने सतयुगी दुनिया को देखा है, सतयुगी भारत को देखा है, अभी कलयुगी दुनिया के भारत को हम क्या देखें। अभी मायावी दुनिया है, इसको देखने की जरूरत नहीं है। तो दीदी ऐसे बहुत प्यार से उसको टुकरा देती थी और कभी दीदी के लौकिक संबंधी बहुत अच्छे अच्छे भोजन लेके आते थे, कुछ वस्त्र लेके आते थे, दीदी उनको भी बहुत प्यार से टुकरा देती थी। बहुत सादा 1-2 रोटी अपने हाथ से बना करके, सादा सा सब्जी, 2-1 सब्जी बना करके सादा भोजन करते थे। तो दीदी के इस धारणा को देख करके दीदी के संबंधी बहुत प्रभावित हुए। इतने त्याग और तपस्या दीदी के जीवन में है, उनका जीवन इतना ऊंच हो गया है, इतना श्रेष्ठ बन गया है। वही संबंधी जो कराची में, हैदराबाद, सिंध में बहुत विरोध करते थे, बहुत अगेंस्ट थे और बहुत गाली देते थे, वही संबंधी अभी दीदी का जो ज्ञान सुना रहे थे वो प्यार से सुनते थे। और दीदी के इस धारणा से बहुत प्रभावित थे और उनका कहना था कि और भी रहे हमारे साथ, कभी वापस कराची न जाए। लेकिन दीदी के दिल में तो हमेशा बाबा बसा हुआ था, बाबा का यज्ञ बसा हुआ था। वो हमेशा यही सोचते थे कब मैं कराची जाऊं, कब मैं कराची जाऊं। लेकिन फिर दीदी के संबंधी कुछ मिल करके सभी का कहना था कि पूरा यज्ञ, पूरे जो 350 भाई बहने हैं कराची में, सभी क्यों नहीं भारत आते। तो एक लेटर लिखा उन संबंधियों ने बाबा को, निमंत्रण देते हुए भारत में आए करके। लेकिन बाबा का कहना था कि हम ऐसे नहीं आ सकते, अगर किसी को इच्छा है ज्ञान अमृत पीने का, ज्ञान सुनने का, और फिर जो बाबा का जो धारणाएं हैं उसको फॉलो जो करेंगे, वही उन्हीं के निमंत्रण पर हम आ सकते हैं। तो दीदी के साथ एक बहन थी, लीलावती बहन, जो कराची से दीदी के साथ गए हुए थे। तो लीलावती बहन के संबंधी, उनको बहुत रुचि थी कि हमको ज्ञान सुनना है और जो बाबा धारणा के लिए कहेंगे वो जरूर हम फॉलो करेंगे। तो उनके निमंत्रण पर बाबा ने फिर कहा कि ठीक है, इस निमंत्रण को हम स्वीकार करते हैं। पूरे यज्ञ, पूरे 350 भाई बहन यज्ञ वत्स भारत आएंगे, अभी आप जगह ढूंढना शुरू करें। दीदी के जो लौकिक परिवार वाले थे, बॉम्बे में बहुत बड़े जसलोक हॉस्पिटल के मालिक थे और भी बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, तो सभी मिलकर के कहा कि ठीक है, हम अलग अलग जगह पर जाकर के यज्ञ के लिए, यज्ञ वत्सों के लिए हम जगह ढूंढते हैं। दीदी लीलावती बहन और रुक्मिणी दादी, तीन चार बहनें, और फिर दीदी के कुछ लौकिक रिश्तेदार पूना, बॉम्बे, अहमदाबाद, इन सभी जगहों पर जाकर के अलग अलग जगह ढूंढना शुरू किया। लेकिन इन शहरों में यज्ञ वत्सों के लिए ऐसी बड़ी जगह नहीं मिल पाई। जब अहमदाबाद आए तो दीदी के लौकिक कुछ गुरु थे, जो जिनका नाम सर्वानंद जी और गंगेश्वरानंद जी थे, तो उन्होंने बहुत सहयोग किया और उन्होंने कहा कि माउंट आबू में बहुत अच्छी अच्छी जगह है, बहुत विशाल जगह है, तो वहां क्यों नहीं जा करके देखेंगे। तो उन्होंने दीदी के साथ एक अपने सन्यासी शिष्य को भेजा, जिनका नाम सिद्धानंद स्वामी जी थे। तो सिद्धानंद स्वामी जी दीदी और लौकिक, जो दीदी के लौकिक और इनके साथ माउंट आबू आए और माउंट आबू में अलग अलग जगह देखना शुरू किया। अलग अलग जब देख जगह देखना शुरू किया, दीदी को ब्रिज कोटी, जो ये महाराजा भरतपुर महाराजा की कोटी थी, ब्रिज कोटी, तो ये कोटी बहुत पसंद आई। और उसी दौरान जो सिद्धेश्वरानंद जी साथ में थे, तो उन्होंने बहुत सुंदर अनुभव अपना अपने शब्दों से ये बताते हैं कि जब जाते समय अपना अनुभव, जो जब मिले, सब रहे ब्रिज कोटी में, साथ में रहे कुछ समय, फिर जाते समय अपना अनुभव सुनाते हुए उन्होंने कहा कि मैं सदा ये समझता था कि स्त्री और पुरुष इकट्ठे रहते हुए कभी भी पवित्र नहीं रह सकते, परंतु मेरे जीवन में अब ये पहली बार अनुभव हुआ है कि वे रह सकते हैं, मतलब पवित्र रह सकते हैं। यहां मैं जितने दिन रहा, मुझे कभी स्त्री पुरुष का भान नहीं हुआ, बल्कि सदा मेरे आत्मिक दृष्टि ही बनी रही। कर्म सन्यासियों के संग रहते हुए मेरी दृष्टि इतनी शुद्ध कभी नहीं हुई थी। प्रैक्टिकली उन्होंने ये अनुभव किया कि स्त्री पुरुष भाई बहन साथ में रह करके कैसे अपना जीवन पवित्र रख रहे हैं और पवित्रता के पथ पर वो चल रहे हैं। प्रैक्टिकली उन्होंने अनुभव किया। जब दीदी ब्रिज कोटी को देख करके पसंद किया, फिर वापस अहमदाबाद जाकर के बाबा को कराची में फोन किया कि बाबा के बाबा को कहा कि बाबा ऐसे एक कोटी देखा है, ब्रिज कोटी, वो काफी अच्छा लग रहा है। तो फिर बाबा ने तुरंत ही कहा कि ठीक है, उसको फाइनल करो। कि दीदी का कहना था कि जैसे जैसे ही उसका जिक्र किया, ब्रिज कोटी का जिक्र किया, कि बाबा ने जैसा कि सोच के रखा था कि यही फाइनल है, तो जैसे निमित्त मात्र, केवल निमित्त मात्र दीदी को वहां जा करके देखने के लिए कहा था। और बाबा तो जानी जाननहार है, उनको पता तो था ही कि माउंट आबू जाना है। और दीदी जब ब्रिज कोटी को देखा, को उनको अंदर से तो ये पसंद नहीं था कि ठीक है वही विशाल तो है, लेकिन फिर इतना पसंद नहीं आया। लेकिन दूसरा संकल्प ये भी आया कि बाबा ने मुरलियों में कभी ये कहा हुआ है कि पांडव विनाश के समय पहाड़ियों पर बैठ करके तपस्या करेंगे और वहां ही गल करके मरेंगे। पहाड़ियों पर बैठ करके पूरे संसार को सकाश देंगे, अशांत संसार को सुख का सकाश देंगे, शांतिमय का सकाश देंगे। तो वो जब याद आया तो दीदी ने सोचा यही वो पहाड़ी है जिस पर पांडव और शिव शक्ति बैठ करके तपस्या करेंगे विनाश के समय। तो बाबा ने भी हाँ में हाँ भर दी, परमिशन दे दी, तो ठीक है यही होगा। तो बाबा ने फिर विश्व किशोर भाव जी को बाबा ने भेजा फाइनलाइज करने के लिए, ब्रिज कोटी को फिर खरीदना था, फिर सारा प्रबंध करना था। तो विश्व किशोर भाव जी को बाबा ने भेजा ब्रिज कोटी में। और विश्व किशोर भाव बहुत ही अनुभवी, विचारवान, निश्चय बुद्धि, त्याग वृत्ति वाले, वफादार और ईमानदार बाबा के बच्चे थे। तो जब कभी लोग यज्ञ के बारे में पूछते थे, भाव को पूछते थे कि यज्ञ में आपका क्या काम है, आपका पोजीशन क्या है, क्योंकि बाबा के राइट हैंड थे भाव, लेकिन कोई ऐसा ऑफिशियल पोजीशन नहीं था। तो भाव को पूछते थे लोग कि भाव आपका पोजीशन क्या है इस यज्ञ में, तो भाव बहुत प्यार से, नम्रता से वो कहते थे कि मैं तो इन माताओं बहनों का छोटा सा सेवक हूँ, मैं गॉडली सेवक हूँ, ईश्वरीय सेवक हूँ। जब भी वो पत्र व्यवहार करते थे तो नीचे लिखते थे ईश्वरीय सेवक। तो इतने यज्ञ के लिए अपने अड्डी अड्डी सेवा भाव ने दी। तो भाव आकर के सब फाइनलाइज किया, सब खरीदारी की, और कैसे यज्ञ वत्सों को कराची से माउंट आबू तक ले आना है, सारा प्रबंध भाव ने किया। तब तक जब यहाँ प्रबंध हो रहा था, तब तक फिर कराची में वहां भी सब समेट रहे थे, पांचों ही भवनों को फिर बेचने के लिए दिया गया, तो वो फिर बेचा गया। फिर वहां जो भी सामान था समेटने लगे, 350 भाई बहनों का सामान, इतना कुछ ज्यादा था, तो उसको समेटना बहुत मुश्किल था। आप सोचिए कि 14 साल जो रहे, 1936 से लेकर के 1950 तक 14 साल जो भाई बहने वहां रहे, तपस्या की, ज्ञान के नोट्स उन्होंने जो ली, तो हर एक के पास पांच पांच छह छह, किसी के पास 10-10, 12-12 नोटबुक हुआ करता था, क्योंकि उन दिनों में तो कोई मोबाइल नहीं था, कंप्यूटर नहीं था। तो जो भी उनके ज्ञान मिलता था तो नोटबुक में हर एक लिखते थे। हर साल 2-3 किताब अगर मान के चले तो 14 सालों में कितने नोटबुक हर एक के पास होता था, हुआ था, तो बहुत ढेर था। तो बाबा ने सोचा कि इतने सारे नोटबुक लेके जाएंगे तो कैसे, स्टीमर तो एक पूरा स्टीमर नोटबुक से भर जाएगा। तो बाबा ने कहा कि बच्चे सभी आपके जो भी नोट्स हैं, जो भी ज्ञान है, उसको एक लोहे के ट्रंक में, बॉक्स में डाल करके गाड़ दिया, भूमि के नीचे गाड़ दिया। और बाबा ने बहुत सुंदर बात कही उस टाइम पे कि बच्चे अभी गाड़ दो, भूमि के अंदर नीचे चले चला जाएगा, द्वापर युग में यही जो भागवत है, यही जो ज्ञान है बाबा का, वो सब कुछ मिलेगा द्वापर में, यही फिर भागवत के रूप में, फिर शास्त्रों के रूप में लोग लिखना शुरू करेंगे। तो सब कुछ नोटबुक वहां धरती के नीचे गाड़ करके, जो भी बहुत ही आवश्यक चीजें थी, केवल उन चीजों को ही सभी ने पैक किया, बांधा। और फिर वहां जो कराची के जो पोर्ट था, तो वहां तक सभी सामान ले जाना शुरू किया। जैसे ही पाकिस्तान वालों को पता चला कि ब्रह्म कुमार कुमारियां भारत जा रहे हैं, तो बहुत उन्होंने विरोध किया, आप नहीं जाइए, कि आप तो खुदा के पैगंबर हैं, यहाँ रहेंगे तो फिर यहाँ इस देश में नापाक कार्य नहीं होगा, आप पवित्रता के फरिश्ते हैं, आप जरूर यहाँ रहिए, आपको हम पूरा प्रबंध दे देंगे, पूरा सुरक्षा दे देंगे, आप प्लीज नहीं जाइए। बहुत रिक्वेस्ट किया, लेकिन भगवान की आज्ञा थी कि सभी को जाना है, तो बाबा की आज्ञा अनुसार सभी अपने लगेज लेकर के वहां पोर्ट के पास आए। और वहां पाकिस्तान के जो भाई बहने हैं, वहां बहुत सारे लोग आए मदद करने के लिए, और वहां का दृश्य बहुत ही सुंदर था। कहते हैं विदाई का ये दृश्य भी उन लोगों के मन को घायल करने वाला था। तब यज्ञवत्सो ने ऐसा महसूस किया था जैसे कि हंस उड़कर दूसरे स्थान पर जा रहे हैं। ज्ञान स्टीमर में बैठ योगी भव सागर से पार जा रहे हैं। ऐसे एक स्थान को छोड़ करके जहां जन्मे थे, जहां पले बड़े थे, जहां यज्ञ में सारे सभी मिल करके रहे हुए थे, उस जगह को छोड़ करके अभी यज्ञवत्स स्टीमर चढ़ रहे थे। और स्टीमर चढ़कर, स्टीमर जब चालू हुआ, फिर स्टीमर में भी अपना ये ज्ञान योग चलता रहा। वहां के कैप्टन और कहां के कर्मचारी बहुत ही सहयोगी रहे, और ऐसे ज्ञान युक्त वातावरण में ज्ञान योग करते हुए हंसते बहलते भारत पहुंच गए, ओका बंदर गुजरात में पहुंच गए हैं। वहां पहुंचते ही भारत भूमि पर आ गए। 5 मई 1950 को सभी भाई बहने भारत भूमि पर अपना पहला कदम उन्होंने रखा। फिर वहां ओका बंदर से लेकर के फिर अबू रोड तक ट्रेन से आए। भारत सरकार का पूरा सहयोग रहा, और फिर पूरा ट्रेन यज्ञवत्सों के लिए दिया गया। फिर यज्ञवत्स वहां ओका बंदर से लेकर के वहां अबू रोड तक जगह जगह पर रुकते हुए, जहां बहुत अच्छी जगह दिखी, भाई बहने ट्रेन के चेन खींच लेते थे, वहां ट्रेन रुक जाती थी, वहां खाना बना लेते थे, नीचे उतर करके खाना बना करके फिर सब खा करके फिर चढ़ते थे, फिर जगह आगे चलते थे। तो ऐसे करते करते अबू रोड पहुंचे, फिर अबू रोड से लेकर के फिर ऊपर माउंट आबू तक गाड़ियों में आए, और फिर ब्रिज कोटी में सभी आए। उसके पहले जब मनमोहिनी दीदी अब तैयार हो रहे थे बाबा को जाकर के ओका बंदर, वहां पोर्ट में जाकर के बाबा को स्वागत करना है, यज्ञवत्सों को स्वागत करना है, तो ब्रिज कोटी में जब तैयार हो रहे थे ऊपर के एक रूम में, तो दीदी को अचानक एक बहुत बड़ा सांप दिखा। बहुत डर गए दीदी, और दीदी को लगा कि शायद जो हमने जगह ढूंढी यज्ञ के लिए, शायद ये जगह गलत है, क्योंकि इतने सारे जानवर, यहाँ सांप है, बिच्छू है, इतने सारे भयानक सारे ये पशु पक्षी है, पशु है यहाँ, तो शायद ये गलत है जगह। फिर एक थोड़ा सा डाउट था कि जैसे ही बाबा से मिले ओका में, तो दीदी ने पहले सबसे पहले बाबा को जाकर के बताया कि बाबा वहां ब्रिज कोटी में बहुत वहां सांप है, मैंने सांप देखा। तो बाबा ने मुस्कुराए, बहुत मुस्कुराते हुए बाबा ने कहा कि बच्ची कोई हर्जा नहीं, वो सांप भी हमारा क्या बिगाड़ेंगे, हमें तो अंदर जो विकारी रूपी सांप है तो उससे हमें लड़ना है। तो बाबा ने बहुत प्यार से हिम्मत दिया, तो निर्भय बनाया, निडर बनाया बाबा ने। और बाद में भी कहते हैं जब भी सांप दिखाई देते थे तो बाबा ने उसको भी बच्चे के रूप में बोलते थे कि बच्चा इस बच्चे को ले जाओ बाहर छोड़ करके आओ। तो मन पंछियों को भी बच्ची के रूप में बाबा देखते थे कि इस पंछी को दाना इस पंछी बच्ची को दाना दो, भोजन दो। मना प्रकृति को भी, पशु पक्षी प्राणियों को भी बाबा इतना प्यार देते थे। तो उस प्यार के सामने कोई भी पक्षी या पंच या कोई भी पशु अटैक नहीं करते थे, कोई हानि नहीं पहुंचाते थे। तो बाबा ने सभी को इतना निर्भय, निडर और हिम्मतवान बनाया था। और जब सभी ब्रिज कोटि आए, रहना शुरू किया, तो लोगों के मन में ये संशय शुरू हुआ कि ये कैसा है, कि ऐसे जगह पर क्यों हम आ गए, क्योंकि जहां कराची एकदम गर्म प्रदेश, सागर के किनारे, यहाँ माउंट आबू इतना ठंडा प्रदेश और इतना खुश्क, एकदम वातावरण अलग, एकदम सब कुछ अलग। तो लोगों के मन में संशय पैदा शुरू हुआ कि ऐसे जगह हमने चुना क्यों। लेकिन बाद में पता चला कि माउंट आबू में इतने सारे मंदिर हैं, दिलवाड़ा मंदिर, जो आदि देव और आदि देवी के तपस्या के निमित्त जो बनाया हुआ है, बहुत सुंदर दिलवाड़ा मंदिर है यहाँ, जहाँ नीचे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं और रूफ में वहाँ स्वर्ग के बारे में दर्शाया गया है। और ही बहुत सारे मंदिर माउंट आबू में हैं, गुरु शिखर है, अदर देवी मंदिर है, अचलगढ़ है, तो बहुत सारे मंदिर माउंट आबू में हैं। और माउंट आबू के आसपास गुफाओं में अभी भी बहुत सारे तपस्वी तपस्या कर रहे हैं। और यहाँ कहा जाता है विशिष्ट मुनि भी यहाँ आकर के तपस्या किए थे, यहाँ विशिष्ट मुनि का आश्रम भी यहाँ है। एक तरफ मंदिर और तपस्या की जगह है और दूसरी तरफ इतने सारे महल हैं। माउंट आबू में कहते हैं करीब 30 यहाँ महल है, समर पैलेसेस है, क्योंकि माउंट आबू के आसपास चाहे गुजरात और राजस्थान के अलग-अलग राजाएं यहाँ गर्मी के दिनों में यहाँ आते थे, यहाँ पोलो खेलने के लिए आते थे। 2-3 मास यहाँ गर्मी में माउंट आबू में रहते थे, जिसके कारण से सभी ने अपना एक एक छोटा सा समर पैलेस यहाँ माउंट आबू में बनाए हुए हैं। अभी माउंट आबू में सभी समर पैलेसेस होटलों में परिवर्तित हुए हैं या स्कूलों में परिवर्तित हुए हैं। तो एक जगह, एक तरफ राजा महाराजाओं के महल और दूसरा ये ऋषि मुनियों के तपस्या की जगह। तो राज ऋषियों की ये जगह माउंट आबू बाबा ने चुना, और यहाँ बाबा यज्ञ की स्थापना की, और आगे की जो भी यज्ञ की जो कार्य कारोबार माउंट आबू से शुरू हुआ, और माउंट आबू से फिर पूरे विश्व ना भारत ना केवल भारत में लेकिन पूरे विश्व में बाबा का संदेश भगवान का संदेश फैलाने में निमित्त हुए निमित्त बने सभी यहाँ से। तो आगे की कहानी आगे के प्रसंग हम फिर कल सुनेंगे। ओम शांति।
ब्रह्मा बाबा विश्वकर्मा। विश्वकर्मा।